ओम शांति। मैं चाहूंगी आप सब साथ में मेरे बात कहेंगे, ओम शांति, ओम शांति। न्यू विजन फॉर न्यू एरा, नए युग के लिए नया दृष्टिकोण, इस विषय को लेकर इंजीनियर साइंटिस्ट विंग के द्वारा आप सभी यहाँ पधारे हैं इस सुंदर ज्ञान सरोवर परिसर में। तो मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें जो मॉर्निंग का सेशन होता है वो मेडिटेशन का सेशन होता है। और आज आपका विषय है मी एंड माइन, मैं और मेरा। तो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मेरा कौन है, उसे समझना ये मेडिटेशन का पहला पार्ट है, जिसको हम राज योग मेडिटेशन कहते हैं, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। मैं कौन हूँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से चलता आ रहा है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, जो बड़े ग्रीक फिलोसोफर्स होकर गए हैं, उन्होंने भी यही प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ। विवेकानंद जब एक लॉ स्टूडेंट था, नरेंद्र नाम था उनका, प्रथम बार जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गया, दरवाजा खटखटाया, स्वामी जी ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? तो नरेंद्र ने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूं। और वही नरेंद्र विवेकानंद बन गया। तो आप सब भी तो यही जानने आए हैं ना, जानने आए हैं ना, मैं कौन हूं। और अगर ये पहेली आपने सॉल्व कर ली तो आप भी बहुत महान बन सकते हैं। मैं कौन हूं ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो कितने उत्तर मिलते हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी रीति से उत्तर देगा। कोई तो धर्म के नाम पर देगा, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ आदि। कोई अपनी जाति के नाम से देगा अपना परिचय, कोई अपनी भाषा के नाम से देगा, मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ या जो। कोई अपनी सिटीजनशिप के नाम से देगा, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, जो भी। कोई अपनी ऑक्यूपेशन से अपना परिचय देगा, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ। और कोई तो ये भी कहेंगे कि मैं तो एक गृहिणी हूँ, क्योंकि कोई जॉब नहीं करते, फिर भी गृहिणी का भी बहुत बड़ा जॉब है, हाउसवाइफ का। मानो मैं आप कौन है, इस प्रश्न के कितने उत्तर मिल सकते हैं। लेकिन सत्य क्या है, क्या ये सब उत्तर सही है या इनमें कोई भी उत्तर सही नहीं है? क्योंकि जब आप समाज में जाते हैं या भगवान के सामने जाते हैं तो आपका उत्तर बदल जाता है। समाज में भले आप अपना परिचय किस भी रूप में दो, लेकिन ये जितने भी परिचय हम देते हैं ये सब परिवर्तनशील है, आज आप इंजीनियर है, कल आप चीफ इंजीनियर बन सकेंगे, फिर परसों रिटायर हो जाएंगे, तो भले टाइटल लेंगे लेकिन ब्रैकेट में रिटायर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब रिटायर्ड हो गए। आज आप इंडियन सिटीजनशिप लेते हैं, है आपकी, कल आप और देश में गए, वहां की सिटीजनशिप ली तो वहां के सिटीजन बन गए। आप आज आप युवा है, कल वृद्ध होंगे तो वो युवा तो नहीं रहे। तो ये जितने भी परिचय हैं ये सब विनाशी परिचय है। तो सत्य परिचय क्या है? सत्य किसको कहते हैं? सत्य अर्थात जो अविनाशी हो, सत्य अर्थात जो नित्य हो, सत्य अर्थात जो अपरिवर्तनशील हो, बदलता न हो। तो ये परिचय तो बदलते हैं, आज मैंने अपना ये नाम दिया, कल कोई और नाम देंगे, परसों कुछ और नाम देंगे, आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और होगा, स्कूल में कोई और नाम लिखवाया होगा, पासपोर्ट में कुछ और नाम होगा, मतलब बदलते रहते हैं ये सब। लेकिन वो परिचय जो असली परिचय है, जो इस जन्म में भी आपका परिचय है, पिछले जन्म में भी था, अगले जन्म में भी होगा, जो भगवान के आगे भी वो परिचय दे सकेंगे, वो परिचय कौन सा है? भगवान के आगे तो हम यही परिचय अपना देते हैं, आरती करते हैं ना, तो आरती में क्या कहते हैं? मैं मूर्ख खल कामी पापी, ये परिचय अपना देते हैं। मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। तो भगवान से कृपा मांगते हैं कि मैं तो नीच पापी कपटी गंदा बंदा, चरणों की धूल मिट्टी, मूर्ख निर्बल, न जाने क्या क्या, यही अपना परिचय देते हैं। पर जब दुनिया में जाते हैं, कोई मुझे ये कह दे भूल से भी कि चल पापी कहीं का, मान लो, तो हम उसी वक्त गुस्सा हो जाएंगे। तुम मुझे पापी कहते हो, क्या पाप किया है मैंने, बताओ क्या पाप किया है, गुस्सा हो जाएंगे। पर भगवान के आगे तो हम खुद ही कहते हैं, कोई और थोड़ी कहता है हमारे लिए, हम खुद ही कहते हैं मैं पापी हूं। तो भगवान के आगे कोई और परिचय और दुनिया के आगे कोई और परिचय है ना, ऐसे ही है ना। तो क्या ये दोनों परिचय मेरा है, पापी भी हूं और मैं फलाना हूं, ये हूं आदि आदि, जो अभिमान से मैं कहते हैं। तो सारे दिन में मैं शब्द कितनी बार हम बोलते हैं। अगर देखा जाए, हम टेलीफोन पर भी जब बात करते हैं तो किसी ने स्टैटिस्टिक्स निकाली कि सबसे अधिक शब्द कौन से यूज होते हैं जब फोन पर बात करते हैं या किसी से डायलॉग करते हैं, तो वो शब्द कौन सा होगा? मैं ये कह रहा हूं, मैं। तो जो सबसे प्रचलित शब्द है मैं, और दूसरा प्रचलित शब्द है मेरा, मेरा मेरा मेरा। तो क्या हूं मैं और क्या है मेरा? वास्तव में ये जो भी हम परिचय दे रहे हैं ये सब असत्य है, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा, फिर है की बजाय था हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए भगवान के आगे कौन सा हमारा परिचय चलेगा? जब किसकी मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति का जो नाम लेंगे वो नाम से कहेंगे इनकी देह शांत हो गई, और फिर कहेंगे हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि देह शांत होना माना मृत्यु, लेकिन आत्मा तो चेतन है, वो तो नहीं मरी। और वो आत्मा कहाँ गई कहेंगे, हाँ भगवान के पास गई। और शरीर कहाँ जाएगा? पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा, वो भगवान के पास नहीं जाएगा। इसलिए जहां से आए हैं वहीं जाना है, शरीर पांच तत्वों से आया है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जिससे ये शरीर बना है। और क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, इस संसार में सब कुछ बदलता है, हर क्षण परिवर्तन होता ही रहता है, तो जो चीज परिवर्तनशील है वो तो विनाशी हो गई। इसीलिए शास्त्रों में लिख दिया जगत मिथ्या, क्योंकि परिवर्तनशील है। पर ब्रह्म सत्यम, क्योंकि अपरिवर्तनशील है। तो ये शरीर भी परिवर्तनशील है, और एक दिन ये पंच तत्वों को वापस लौटाना पड़ेगा जहां से आया है। लेकिन आत्मा परमात्मा से आई है, इसीलिए हर वक्त उस परमात्मा को भी हम याद करते हैं। ऊपर वाला जाने, हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड, हाय हे प्रभु, कई शब्दों से हम उस परमात्मा को पुकारते हैं। तो वास्तव में मैं कौन हूं? परमात्मा को हम पिता कहते हैं, तो किसका पिता है वो? शरीर का पिता तो हरि का अपना अपना है, लेकिन परमात्मा को हम पिता किस रूप में कहते हैं? वो आत्मा का पिता है। तो चलो ये परिचय अगर कोई न भी दे, सारे परिचय अपने, लेकिन ये भी यही कह दे मैं मनुष्य हूं। अब मनुष्य का भी मतलब क्या है? ये सब परिचय, ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन मनुष्य तो समझते अपरिवर्तनशील है। लेकिन मनुष्य भी अगर मैंने कहा, अब आत्मा निकल गई, शरीर डेड बॉडी हो गया, अब उसको मनुष्य कहेंगे क्या? कहेंगे ना? जिंदा व्यक्ति पर, बहुत सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल में ले आते हैं, और हॉस्पिटल में आने के बाद, एडमिट होने के बाद उसकी डेथ हो गई, मान लो बहुत सीरियस था, नहीं बचा, तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे? प्लीज टेक द डेड बॉडी अवे, प्लीज टेक द डेड बॉडी अवे। ये नहीं कहेंगे फलाने को ले जाओ जिस नाम से एडमिट किया था हॉस्पिटल में, टेक द डेड बॉडी अवे, क्योंकि आया जीवित और जा रहा है डेड बॉडी के रूप में। तो वो कौन सी शक्ति थी जो जीवित थी और अभी वो जीवित अभी नहीं है, वो निकल गई, उसको हम कहेंगे आत्मा। तो फिर मैं कौन हुआ? क्योंकि परमात्मा के सामने साक्षी तो मैं आत्मा बनूंगी ना, शरीर तो नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं कौन हूं ये क्यों इतनी पहेली बन गई है बड़ी? क्योंकि उस सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है कि मैं वो आत्मा हूं। इसीलिए कहने में आता है जीव आत्मा। जीव और आत्मा ये दोनों साथ में जोड़ते हैं, और जीव आत्मा के लिए कहा जाता है जीव आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। इसका मतलब क्या है? कौन है मित्र, कौन है शत्रु? और फिर कहा गीता में आता है स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो स्वधर्म क्या है, पर धर्म क्या है? स्वधर्म से सुख कैसे मिलता है, पर धर्म से दुख कैसे मिलता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज के हम समाज में देखते हैं जहां चारों ओर दुख, अशांति, लड़ाई, झगड़े, मारा मारी, रोज सवेरे न्यूज़पेपर उठाएं या टीवी खोलें, क्या न्यूज मिलती है? पहले तो यही कहते थे, कहा जाता था नो न्यूज इज गुड न्यूज, अभी कहते हैं गुड न्यूज इज नो न्यूज। अगर गुड न्यूज ही आ जाए अखबार में पहले पेज पर, बहुत अच्छी न्यूज है आई, तो लोग कहेंगे आज तो कोई समाचार ही नहीं है, क्योंकि बैड न्यूज इज न्यूज. आज एक्सीडेंट हुआ, आज ये इतने मरे, प्लेन गिरा, ये गिरा, या जो कुछ भी, या भूकंप आया है, तो वही न्यूज बनती है. तो गुड न्यूज इज नो न्यूज, ओनली बैड न्यूज इज न्यूज. और पहले कहते थे नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्योंकि अगर कोई आपको फोन पर कोई समाचार नहीं मिला तो इसका मतलब सब ठीक ही होगा, इसलिए गुड न्यूज है. परंतु अगर हम न भी पता करें तो भी संसार में आज क्या चल रहा है. परंतु क्या संसार सदा ही ऐसे था? अवश्य नहीं. नहीं तो प्रश्न उठेगा, हे भगवान, आपने ऐसे दुख की दुनिया क्यों बनाई? परमात्मा तो सुख का सागर है, वो दुख की दुनिया क्यों बनाएगा? अगर कोई किसी रचना का रचनाकार है, वो यही कोशिश करेगा ना, मैं अच्छे से अच्छी रचना बनाऊं, बुरी रचना क्यों बनाएगा? तो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है और उसकी ये रचना है संसार. तो ये संसार सदा ही दुख रूप कैसे हो सकता है? अवश्य कभी सुख रूप था, लेकिन वो दुख धीरे धीरे दुख रूप बना. तो क्या फिर से सुख रूप नहीं बन सकता है? अवश्य बन सकता है. पर कैसे बने? हम एंट्रोपी में पढ़ते हैं, एवरीथिंग गोज टू अ डिक्लाइन. सतो से रजो, रजो से तमो, होता ही रहता है, एवरीथिंग इज फॉलिंग. परंतु अगर उसको राइज करना है तो इंटरवेंशन होगा, तब उसको राइज कर सकेंगे, नहीं तो गिरता ही जाएगा. तो अब का जो समय है इतना गिर चुका है, अब आवश्यकता है इंटरवेंशन की, ताकि फिर से वही स्वरूप बने. तो इसलिए न्यू विजन फॉर न्यू ईरा. तो क्या विजन हम बनाएं जिससे न्यू ईरा बन जाए, नया युग बन जाए? अगर हम किसी से पूछेंगे कौन सा युग चल रहा है, तो यही कहेंगे ना, भाई कलयुग है, कलयुग है. और क्या होगा कलयुग में, क्या होगा? लेकिन कलयुग है ये कहते कहते दुखी थोड़ी होना है. और कलयुग सदा तो रहेगा नहीं, रात सदा नहीं रहती. अगर हम अपने अंदर से दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, तो हम सतयुग ला सकते हैं. पर उसके लिए क्या परिवर्तन लाना है? पहले मैं और मेरा, इसको समझना है. क्योंकि यही दो शब्द हैं जिन्होंने इस दुनिया को नरक बनाया है, और यही दो शब्द हैं जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे. तो मैं कौन? आप अगर ये भी कहेंगे कि मैं एक मनुष्य हूं, तो मनुष्य का मतलब केवल हड्डी मांस का ढांचा तो नहीं है ना, केवल एक स्केलेटन को तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना. मनुष्य माना जिसमें चेतनता हो. इसीलिए जीव और आत्मा, इन दोनों का समावेश को हम मनुष्य कहते हैं. तो मनुष्य हड्डी मांस के ढांचे में आत्मा की प्रवेशता है, तब कहेंगे जीव आत्मा. तो ये शरीर तो विनाशी है, पर मैं वो आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, जो सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, जिसको हम इंग्लिश में सोल कहते हैं, साइकी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं. और उसको समझना माना खुद को समझना, क्योंकि वही सत्य है जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, जलती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं. जब भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इन सबको मारो, तो अर्जुन मोह के वश हो गया, कैसे मारूं, ये मेरे मामा, चाचा, काका, हाँ, मेरे गुरु गुसाई, मैं इनको मारूं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, इतना हाँ योग्य बनाया, मैं इनको मार डालूं। तो भगवान ने सबसे पहला पाठ अर्जुन को क्या सिखाया कि आप इनको आत्मा देखो, इनको शरीर मत देखो। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो शरीर मरता है। इसीलिए आत्मा देखेंगे तो आपको ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं मारता हूं। अब इसके पीछे राज जरूर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बंदूक उठा के मारते जाएं सबको और कहेंगे आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन ये मैं को मारो, मैं जो अभिमानवश हम मैं कहते हैं उसको मारो। इसलिए देखो भक्ति में, भक्ति मार्ग में बकरे की बलि देते हैं, खास नवरात्रि के दिनों में, अष्टमी के दिन कितनों कितने बकरों की बलि चढ़ती है। भारत में भी, हिंदुओं में भी है। तो ये बकरे की बलि चढ़ाना माना, और वो भी बकरे का केवल सिर, सारा धर नहीं। मुझे याद है मैं नेपाल गई थी तो नेपाल में अष्टमी के दिन बहुत बलि चढ़ाते हैं देवी के आगे, तो बहुत बलि चढ़ती है। तो सारे धर पड़े थे, सिर कटा हुआ और फत 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 खून 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 चारों ओर था। तो हमने कहा इनके सिर कहाँ गए, तो कहा सिर वो तो देवी को बलि चढ़ा दिया। हाँ देवी के आगे बलि चढ़ा दी। वो धर धर कांप रहे थे, धर वो धर जो थे वो कांप रहे थे, अभी खून तो गर्म होगा। तो फिर हमने कहा कि ये जो इतने सारे मरे हुए हैं जानवर, इनका क्या करेंगे, सिर तो बलि देवी को दे दिया। तो कहा ये सब महाप्रसाद बनेगा, महाप्रसाद ऐसा वहां पर सब है। खैर लेकिन ये सिर की बलि, और उसमें भी आप देखते हैं नर बलि होती है, बकरा भैंसा मुर्गा मुर्गी या भैंस या गाय वो नहीं, परंतु मुर्गा भैंसा या बकरा। तो मैं की बलि अर्थात पुरुष की बलि स्त्री के आगे, देवी है ना, देवी तो स्त्री हो गई। तो ये सिर किसकी निशानी है, अभिमान की निशानी है। है वास्तव में अभिमान को खत्म करो। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, हम हैदराबाद अगर आप गए होंगे तो हैदराबाद में सलारजंग म्यूजियम है, निजाम का म्यूजियम है हैदराबाद में, गए ना, जो हैदराबाद के हैं जानते हैं ना। तो उस म्यूजियम में नीचे बेसमेंट में म्यूजियम है, बहुत बड़ा है। तो एक एक स्टैचू है, उस स्टैचू में क्या दिखाया है कि एक पुरुष है, आगे पुरुष है लेकिन उसके पीछे स्त्री है। तो आगे पुरुष का चेहरा और पीछे स्त्री का चेहरा, और वो झुका हुआ है। तो जब आगे चेहरा दिखाते हैं तो वो पुरुष का चेहरा ऐसा ऐसा सिर ऊपर, परंतु अगर इसी को आप पीछे देखो तो वो स्त्री का चेहरा और वो झुका हुआ। बहुत सुंदर फिगर है। तो स्त्री का चेहरा झुका हुआ माना नम्रता की निशानी, और पुरुष का चेहरा अभिमान। मैं तो वास्तव में ये जो अभिमान है यही सब दुखों की जड़ है, यही सब दुखों की जड़ है, यही पाप की जड़ है। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, दया धर्म का मूल है, आगे पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है। कई कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम सदा सच बोलते हैं, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलते, लेकिन सुबह से लेकर रात्रि तक जो अभिमान वश भी मैं कहते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि मैं वो, ये अभिमान वश मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन? तो जब कहेंगे शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर मनुष्य कहते हैं, तो आत्मा क्या चीज है? इंग्लिश में सोल कहते हैं तो SOUL, तो सोल का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक एनर्जी। वो यूनिक एनर्जी है और एनर्जी तो सदा ही कांस्टेंट है। क्या सीखते हैं हम साइंस में, साइंस में मैटर के साथ एनर्जी है और एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, इवन मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैटर भी एनर्जी का ही तो रूप है। तो वो एनर्जी तो सदा ही है ही है, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तो वो जो एनर्जी है वो मैं हूं, जो सदा से चली आई हूं, आदि में भी थी, मध्य में भी हूं, अंत में भी रहूंगी। ये शरीर तो परिवर्तनशील है और इसलिए जब शरीर, जब मनुष्य का जन्म होता है तब क्या कहते हैं, तब उस समय कहते हैं इसने नया चोला लिया। तो शरीर को चोले से फेंट करते हैं, दिस बॉडी इज लाइक ए कॉस्ट्यूम। और क्या कहा, ये संसार एक रंगमंच है, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो एक्टर को रोल बजाने के लिए अलग अलग ड्रेस पहननी पड़ती है। मुझे याद है हम सुनते थे हमारे अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े एक्टर होके गए हैं, माना है एक्टर लेकिन इतनी फिल्मों में काम करते थे। तो किसी ने बताया सवेरे तो उसने फिल्म, जो कौन सी फिल्म में काम किया, वो था शहनशाह, और शाम को शूटिंग हुई तो कौन सी फिल्म में काम किया, कूली। तो सवेरे था शहनशाह और शाम को बन गया कूली। अब वो शहनशाह था या कूली था, न शहनशाह है न कूली है, वो तो उनका तो अपना अपना इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी है। तो ये तो सब रोल है ना, तो रोल तो कितने बजाते हैं हम लोग। एक स्त्री होगी, एक वो माँ का रोल बजाती है, बहन का रोल बजाती है, बेटी का रोल बजाती है, पत्नी का रोल बजाती है ना, सुबह से लेकर रात्रि तक कितने रोल बजाते हैं। पुरुष लोग ऑफिस में जाते, ऑफिस में रोल अलग है, घर में रोल अलग है, दोस्तों के साथ रोल अलग है ना। तो कितने रोल्स हम बजाते हैं, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी थोड़ी है, आइडेंटिटी तो अलग ही चीज है। तो उस आइडेंटिटी को पहचानना, माना खुद को पहचाना। जब आपने ओम शब्द का एक्सरसाइज की लास्ट में ओम का, तो ओम शब्द भी तीन अक्षर से निकला है, अ उ और म, अ उ म, तीन अल्फाबेट्स होता है, ए यू एम। अब तीनों अक्षरों का अलग अर्थ है, एक अ फिर उ फिर म, व ही मैं। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ओम इज दैट इज मी। सो वॉट इज दैट विच इज मी, मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, जो सत्य हूं, जो चैतन्य हूं, जो आनंद स्वरूप हूं। लेकिन आज मैं अपने आप को भूल गया हूं और ये जो देह से संबंधित जो भी परिचय है उसी को ही अपना सही परिचय मान चुका हूं और इसीलिए ही दुखी हूं। तो क्या है आत्मा, वो एनर्जी क्या है। जब वो निकल गई तो शरीर डेड बॉडी हो गया। उसकी एनर्जी क्या है जो शरीर में नहीं है। एक है सोचने की शक्ति, आप समझेंगे कि ये ब्रेन सोचता है, पर ब्रेन भी एक माध्यम है, ब्रेन सब कुछ नहीं है। ब्रेन एक माध्यम जरूर है, जैसे कंप्यूटर है आपके पास, ये माइक है, ये साधन है, तो ब्रेन भी एक साधन है। लेकिन उसको यूज करने वाला कौन। अब माइक है, बहुत एम्पलीफाई करो, आवाज बढ़कर आपके पास आता है, लेकिन बोलने वाला कौन? इसी प्रकार ये शरीर की जितने भी अंग हैं, ये सब यूज के लिए हैं, परंतु इनको यूज करने वाला कौन? ये आंखें देखने के लिए, पर ये आंखें तो लेंस का काम करती है, पर इन आंखों से देखता कौन है? इन आंखों को क्या पता कि ये कौन बैठे हैं, ये क्या बैठे हैं? कैमरा को थोड़ी कुछ पता है ये कौन है, वो तो बस क्लिक होगा, पर क्लिक भी कोई करेगा? इन कानों को क्या पता है कि मुझे क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना है? ये कान थोड़ी निर्णय करेंगे क्या सुनना है, ये मुख तो निर्णय नहीं करेगा ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो निर्णय करने वाला कौन, सोचने वाला कौन? ब्रेन भी एक साधन जरूर है, इसके द्वारा सोचता कौन है? ये हाथ पैर, ये सारी शरीर की इंद्रियां, ये सब साधन के रूप में है। मैं चाहे तो मेरे हाथ में छुरी है, चाकू है, उस चाकू से चाहू तो मैं किसी की हत्या करूं, और वही चाकू किसी डॉक्टर के पास आ जाए तो वो तो जान बचा देगा। ऑपरेशन करके चाकू यूज होता है ना, तो चाकू का तो कोई दोष नहीं है। फिर आप कहेंगे हाथ का दोष है, हाथ किसी को थप्पड़ मारता है और वही हाथ है आशीर्वाद भी करता है, वही हाथ है जो भीख भी मांगता है, वही हाथ है जो वरदान भी देता है, जिसे देवियों का हाथ देखते हैं। तो ये वरदान देना, आशीर्वाद देना, भीख मांगना, ये हाथ करता है, लेकिन इस हाथ को कौन आदेश देता है? तो वो आदेश कौन देता है उसको समझना माना वो खुद को समझना है। इसीलिए मैं कौन हूं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, इसका उत्तर है कि मैं एक आत्मा हूं। अब आत्मा जो एनर्जी है, इसलिए एनर्जी दिखाई नहीं देती है। एनर्जी को आप कहां देख सकेंगे? ये आवाज भी एक फिजिकल एनर्जी है, इस मुख को देख सकते, इस मुख से ये आवाज निकला, लेकिन आवाज को तो आप देख नहीं सकते हो ना, केवल सुन सकते हो। आंखें देखती है पर सुन तो नहीं सकती है ना, उनका एक ही काम है देखना। मुख बोल सकता है पर न सुन सकता है न देख सकता है, केवल बोल सकता है। तो हर अंग का अपना अपना काम है, पर ओवरऑल हम कहते हैं मैं, तो ये मैं किसने का? आंख ने का, कान ने का, मुख ने का, किसने का? क्योंकि जब हम शरीर के अंगों की बात करते हैं तब मैं शब्द नहीं कहते हैं। मेरे कान, मेरा मुख, ये थोड़ी कहते हैं मैं कान, मैं मुख, मैं कहते हैं क्या उसके लिए? मेरा कान तो बना मेरी चीज अलग हो गई, मैं अलग हो गया। ये मेरा रुमाल है तो रुमाल तो मैं नहीं हूं ना, तो मैं और मेरे में कितना अंतर हो गया? मैं हो गया साधक और मेरा हो गया साधन। तो साधन तो अनेक है, लेकिन साधक कौन है, उसको यूज करने वाला कौन? तो ये शरीर भी एक साधन है। यहां तक भी हम कह देते हैं मेरा शरीर आज बहुत दुख रहा है, तो मेरा शरीर कहने वाला मैं तो अलग हो गया ना, शरीर मेरा है पर मैं तो नहीं हूं ना। तो बस इस अंतर को समझना है। तो कई समझते हैं ठीक है मैं एक आत्मा हूं, फिर कह देंगे हाँ अभी आत्मा हूं समझा भी, लेकिन जब भाषा बोलते ना, प्रैक्टिकल में जब बोलते हैं तब भाषा बदल जाती है। कैसे? क्या कह देंगे? मेरे अंदर एक आत्मा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर एक आत्मा है, अधिकतर हम यही कहते ना, मेरे अंदर एक आत्मा है। अब मेरे अंदर एक आत्मा है का मतलब क्या हुआ कि मैं शरीर हो गई और मेरे अंदर एक आत्मा है, तो आत्मा अलग हो गई, वो मेरा हो गया और मैं शरीर हो गया, मेरे अंदर एक आत्मा है। अब ये सही है वाक्य? क्या कहेंगे? मेरे अंदर एक आत्मा है, इज दिस अ राइट सेंटेंस? है या नहीं? है या नहीं? जो कहते हाँ सही है, मेरे अंदर एक आत्मा है, वो हाथ उठाई, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा, फिर दूसरा वाक्य है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब ये वाक्य सही है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, ये भी सही नहीं है, नहीं। फिर तीसरा वाक्य है, मेरे शरीर में मैं आत्मा हूं। अब ये वाक्य सही है, जो समझते हैं, ये थर्ड वाक्य सही है, मेरे शरीर में मैं आत्मा हूं, वो हाथ उठाएंगे। अब सब हाथ उठाएंगे जरूर, क्योंकि यही सही उत्तर है, क्योंकि ये बोलने वाली तो मैं आत्मा हूं ना, शरीर थोड़ी बोल रहा है। तो मेरे शरीर में, शरीर मेरा है, पर मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूं कि मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं कर रही हूं। अब ये क्रियाएं तो शरीर से होगी, वह तो है, लेकिन ये करने वाला कौन? मैं आत्मा। तो आत्मा क्या एनर्जी है? व्हाट इज इट? एनर्जी है, चलो माना, पर वो कौन सी एनर्जी है जो शरीर में वो नहीं है? वो शरीर से अलग है, वो एनर्जी है सोचने की शक्ति। ये सोचने की शक्ति ब्रेन के अंदर है जरूर, आत्मा है ब्रेन में, जो सोचती है ब्रेन के द्वारा। पर ब्रेन अगर है पर आत्मा नहीं है तो ब्रेन थोड़ी सोचेगा। कंप्यूटर तो बंद पड़ा है, उसको ऑन ही नहीं किया है। तो इसीलिए शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब साधन है, ये साधक नहीं है। तो सोचता कौन है? कोई कहे कि ये, कोई कहे चलो आत्मा सोचती है, तो आत्मा सोचती है तो कहाँ है शरीर में? फिर कहेंगे, कोई कहते हृदय में है, कोई कहेंगे मस्तक में है, कोई क्या क्या कहते, कोई तो कहते हर कण कण में है। अब आत्मा कहाँ होगी शरीर में? अवश्य वहीं होगी जहां से पूरे शरीर का संचालन है, जहां से पूरा उनका कंट्रोल है, वही तो होगा। जैसे किसी भी बड़ी फैक्ट्री है या कोई भी ऐसा बड़ा स्थान है तो उनकी कंप्यूटराइज है वो सारा, पर कंट्रोल रूम तो एक होगा ना, जहां से सारा कंट्रोल होता है। तो कंट्रोलर कौन है? ये कंट्रोल रूम जरूर है ब्रेन, क्योंकि यहां से सारा कंट्रोल होता है, लेकिन कंट्रोलर कौन है? क्योंकि मैं आत्मा हूं तो सोचने की शक्ति आत्मा में है, जिसी को हम मन कहते हैं। और मन के लिए क्या कहते हैं? मन तो बड़ा चंचल है, मन पापी है, मन दुष्ट है, मन नीच है, मन एक घोड़ा है, क्या क्या कह देते हैं मन के लिए। यहां तक कह दिया मन जीते जगत जीत। आपने अगर अपने मन को जीत लिया तो आप सारे जगत को जीत सकते हैं। लेकिन मन कोई जड़ चीज थोड़ी है कि उसको हम मार डालेंगे। कई तो समझते बस ये मन तो मरता ही नहीं है, ये मन तो रोज नई नई इच्छाएं प्रकट करता रहता है, भागता रहता है। लेकिन मन वास्तव में और कुछ नहीं है, ये आत्मा की सोचने की शक्ति है। मन चेतन है, मन कोई प्रकृति की जड़ चीज नहीं है, ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है। आज न्यूरोसर्जन्स ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन कहाँ है ये कहाँ लोकेट कर सकेंगे? ब्रेन के अंदर लोकेट कर सकते हैं मन कहाँ है? क्योंकि ये ब्रेन की चीज नहीं है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सब बहुत कुछ कह देते हैं, पर मन कहाँ है? क्योंकि मन आत्मा की चीज है और वो मन सोचता ही रहता है, वो संकल्प शक्ति है। पर मन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि मन को मारना। किसी, चलो कोई कहे मन तो दुश्मन है, मन को मारो। अब दुश्मन को मारना क्या बड़ी बात है? मन दुश्मन को अगर हम उसको पकड़ सके, उसके ऊपर मुकदमा चला सके, तब है ना बात मार डाला खत्म हो गया। आजकल तो यही समझते हैं ना, मार डालो खत्म। परंतु मन हमारा दुश्मन भी नहीं है, चलो दुश्मन है मार डालो तो ठीक है, मन तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। ये मन ही तो है जिसको हमें भगवान में लगाना है। अर्जुन को यही कहा ना, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ। तो मन हमारा दुश्मन थोड़ी है जो हम मन को मारने की कोशिश करें, मर जा हाँ मन मर जा। तो मन मर गया तो जड़ हो गया शरीर, क्योंकि शरीर थोड़ी सोचता है, वो तो जड़ है। तो सोचने की जो शक्ति है वो मन है, लेकिन मन के ऊपर भी कोई शक्ति है जो आत्मा के अंदर है, और वो शक्ति है बुद्धि। भगवान से हम मन नहीं मांगते, हम बुद्धि मांगते हैं। हे प्रभु हाँ बच्चा है, बहुत चंचल है, बहुत नटखट, बहुत परेशान करता है, तो माँ बाप क्या कहेंगे, हे भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दो। क्या कहते हैं, हाँ इस बच्चे को सद्बुद्धि दो। तो बुद्धि कौन देता है, भगवान देता है। तो बुद्धि सद्बुद्धि भी होती है तो दुर्बुद्धि भी होती है, लेकिन बुद्धि का काम है उस चीज को परख करना, परखना, निर्णय करना, आदेश देना। क्योंकि मन तो एक घोड़ा है और बुद्धि उसकी लगाम है, तो मन की तुलना हम किससे करते हैं, तरंगों से करते हैं। जैसे तरंगे निकलती है ना, एनर्जी वेव्स निकलती है, और एनर्जी वेव्स की स्पीड इतनी तेज है जो आप इसको माप नहीं सकते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया, E is equal to mc square, एनर्जी की माप क्या है, मास इंटू स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मास को स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करो, वो एनर्जी है। तो इतना मास और एनर्जी अनंत बेअंत। तो फिजिकल एनर्जी की जो स्पीड है वो भी लिमिट है। फिजिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये एनर्जी की भी लिमिट है। सूरज से किरण निकलती है, इस धरती पर आने में 8 मिनट लगते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर द सन रे, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सन एंड रीचेस द अर्थ। 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मन को सूरज में जाने में, सूरज तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, है? कितनी देर, 2 मिनट, 1 मिनट, कितनी देर लगती है मन को सूरज तक पहुंचने में, 1 सेकेंड। तो मन की स्पीड कितनी होगी, आप सोचो, कैन यू काउंट। इसी को ही तो कहते थे कुदरत, क्योंकि ये सारी फिजिकल एनर्जीज है, ये फिजिकल एनर्जीज की भी लिमिट है, उनको आप माप सकते हो, लेकिन मन की एनर्जी को आप माप नहीं सकते हो, क्योंकि वो फिजिकल एनर्जी नहीं है। कई कहते हैं हम आत्मा को देख क्यों नहीं सकते हैं, शरीर से आत्मा निकल गई, डेड बॉडी हो गया, एकदम श्वास खत्म, सब खत्म, तो अब देख क्यों नहीं सकते आत्मा को। बहुत परीक्षण किया वैज्ञानिकों ने आत्मा को देखने का, लेकिन क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आत्मा इन आंखों से कैसे दिखाई पड़ेगी, सोचने की बात है ना। ये आंखें तो प्रकृति की है, ये आंखें कोई स्पिरिच, कोई वो आत्मा की शक्ति तो नहीं है ना, ये आंखें प्रकृति की चीज है। तो प्रकृति की चीज प्रकृति को ही देखेगी ना, जो अप्राकृतिक है, जो मेटाफिजिकल है, उसको ये फिजिकल आंखें कैसे देख सकती है, फिजिकल एनर्जी को भी नहीं देख सकती है, तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब इसको हमें समझना है, वो मैं हूं। तो आत्मा क्या चीज है, उसमें 3 शक्तियां हैं, जैसे MIS कहते हैं ना, तो मन, माइंड, आई माना इंटेलेक्ट बुद्धि और एस माना संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया। तो भाग्य लेकर आया क्या, कौन आया भाग्य लेकर? बच्चा तो माँ के गर्भ में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, फिर प्रकट, फिर बाहर आया। तो भाग्य लेकर आया कहाँ से लेकर आया? कोई प्रकृति से थोड़ी लेकर आया। फिर कोई व्यक्ति मरता है तो तब क्या कहते हैं, अपना कर्म लेकर के गया, बाकी कुछ नहीं लेकर गया ना। कई कहते हैं ना, हम संसार से जाएंगे तो कुछ नहीं ले जाएंगे, आए हैं कुछ नहीं लेकर आए। तो जाएंगे कुछ नहीं लेकर जाएंगे, आए हैं कुछ नहीं लाए हैं, ये भी गलत है सोच। इस संसार की तो कोई वस्तु न लाए हैं न ले जाएंगे, वो तो सही है, लेकिन कर्म और भाग्य ये अवश्य हम लाए हैं और ले जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा के साथ जाती है, वो आत्मा के साथ जाती है। तो बच्चा पैदा हुआ भाग्य लाया, मनुष्य मर गया कर्म ले गया, तो वो कर्म ही भाग्य बन करके आता है और उसी को हम कहते हैं संस्कार। संस्कार, आज मैं अब ये बोल रही हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, चाहे ये वीडियो में भी रिकॉर्डिंग होगी या साउंड में भी, ऑडियो में भी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब हम रिवर्स, हम रिवाइंड करेंगे, हम फिर से सुन सकते हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो नष्ट नहीं होता है, वो आत्मा के अंदर निहित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये कर्म फिलॉसफी है। हर कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले या सात जन्मों के बाद भी मिले। इसीलिए कहते हैं कर्म की गति बड़ी बलवान है, मनुष्य नहीं समझ सकता है। इसलिए प्रश्न उठता है, ये क्यों? हमने तो कोई पाप नहीं किया तो ये क्यों मुझे भोगना हो रही है? ये इस जन्म का कर्म भले ना हो, अब किस जन्म का है, पर मेरा ही कर्म का फल है ये, हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं। इस शरीर में मैं एक एक्टर हूं और ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। आत्मा ने तो कितने वस्त्र बदली किए होंगे, तो ये वस्त्र तो मैं नहीं हूं ना। हर जन्म में अलग अलग वस्त्र मिला होगा, हर जन्म में अलग अलग पार्ट मिला है। इस जन्म में जो मेरी पत्नी है, जरूरी थोड़ी कि पिछले जन्म में भी वही थी, या बच्चा है वो पिछले जन्म में भी वही था। अभी अगर मेरे फादर की डेथ हो जाए तो ऐसे भी हो सकता है वो फादर की आत्मा मेरा बच्चा बन के आए, नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पिता की आत्मा, पिता ने शरीर छोड़ा और वो आत्मा मेरा बच्चा बन करके मेरे पास जन्म ले, हो सकता है ना? पर उस बच्चे को आप पिता थोड़ी कहेंगे, संबंध बदल गया, बदल गया कि वही संबंध रहेगा, आप उनको पिताजी कहेंगे। ऐसे बहुत मिसाल है, बहुत मिसाल है, अभी उदाहरण देंगे तो समय जाएगा। लेकिन इससे सिद्ध है कि ये जितने भी देह के संबंध है ये भी सब विनाशी है। आज है कल नहीं रहेंगे, क्योंकि हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं है, वो संबंध खत्म। चाहे आए भी आपके पास, लेकिन दूसरा संबंध हो जाएगा। इसीलिए हम कौन है ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो मन ये आत्मा की शक्ति है, और मन क्या है, ये एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाएंगे, खाली प्रेजेंट में थोड़ी, पास्ट में भी पहुंच जाएंगे, फ्यूचर में भी पहुंच जाएंगे। कितना कहां कहां मन जाता ही रहता है। और सबसे सुंदर उदाहरण है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसमें दिखा जिसमें बताते हैं ना कि कैसे अब ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट बीट बंद हो गया, बिल्कुल डेड हो गया और फिर जिंदा हो जाता है और जिंदा होकर वो अपना अनुभव सुनाता है। मैं ऊपर से देख रहा था। कैसे देख रहा था? शरीर में आंखें तो शरीर में थी, देख कैसे रहा था? पर आत्मा की भी आंख है। आत्मा की आंख कौन सी है? मन। मन की आंख से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। विजन माना क्या? केवल ये विजन थोड़ी है। मन की आंख से पता नहीं क्या क्या हम देख लेते हैं, कहां कहां पहुंच जाते हैं। और केवल देख ही नहीं रहा था, सुन भी रहा था। डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे थे वो भी सुन रहा था। कान तो शरीर में थे, कौन सा कान सुन रहा था? तो कहेंगे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि समझती है। फिर केवल सुन रहा था, देख रहा था नहीं, वो बाहर गया, उसके रिश्तेदार बाहर बैठे थे और अपनी पत्नी से वो बात कर रहा है, वो अपना स्नेह दिखा रहा है, वो संस्कार भी काम कर रहे हैं और यहां तो बॉडी डेड पड़ा है। तो मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने की शक्ति है, बुद्धि समझने की शक्ति है और संस्कार ये कर्म का प्रभाव है जो आत्मा के साथ जाता है। मन में कई संकल्प आते हैं लेकिन बुद्धि निर्णय करती है कि कौन से संकल्प को, विचार को कर्म में लाना है और फिर हम कर्म करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। कर्म ऐसे ही सीधा मत करो, पहले सोचो, ये मन का काम, फिर इसको समझो, ये बुद्धि का काम, फिर करो, ये इंद्रियों का काम। लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस होता है ना, अभिमान से चूर होता है, वो सोच समझ कर कर्म नहीं करता, सीधा कर्म कर लेगा, गाली दे देगा, कुछ ना कुछ कर देगा विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो कर लेने के बाद समझता, ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर सोचता अभी क्या करूं, चलो अभी सॉरी कह देता हूं। वो कहेगा बोल तो दिया, अब तीर तो निकल गया मुंह से, तुम कितना भी वापस लो तीर, वो जाएगा थोड़ी, जाएगा वापस तीर वो कमान में नहीं। तो इसीलिए सोच समझ कर कर्म करो। जो भी कर्म करो पहले मन से सोचते हैं, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर कर्म। तो बुद्धि की तुलना हम कई बार एक तराजू से करते हैं। तराजू वजन देता है और कुछ नहीं बताता है। आप हीरा डालो, पत्थर डालो, मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, वजन केवल बताएगा। तो बुद्धि, निर्णय शक्ति, वो वजन बताती है कि इसका मूल्य कितना है, क्योंकि वो वैल्यूज को महत्व देती है बुद्धि सचमुच। इसलिए सद्बुद्धि माना वैल्यूज को महत्व देना। लेकिन अगर बुद्धि मन के वश हो जाए तो क्या होगा? तो मन बेलगाम घोड़ा, तो बुद्धि भी बेलगाम हो जाती है और परिणाम स्वरूप हम कितने पाप कर्म कर लेते हैं। फिर अब पछतावत क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए आत्मा को पहचानना माना पहले ये पहचानना, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति बिंदु हूं, परमात्मा की मैं संतान हूं। और कहां की रहवासी हूं? ये संसार मेरा घर नहीं है, ये संसार तो एक मुसाफिर खाना है, यही कहते हैं ना, एक स्टेज है, रंगमंच है, दूसरा मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने होते थे, धर्मशालाएं होती थी, धर्मशाला या होटल को वहां देते थे दो चार दिन के लिए, फिर चले जाते थे, वो कोई घर थोड़ी था। चलो टेम्पररी भी आप गेस्ट हाउस में कहीं रहे, वो टेम्पररी घर है, लेकिन परमानेंट घर तो आपका अलग होगा। आप कोई अपना फॉर्म भरते हो तो अभी दो एड्रेस लिखते हो, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस आपकी कोई भी होगी, हो सकते टेम्पररी आप वहां ठहरे हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस तो आपकी तो अलग होगी ना। तो आत्मा की ये प्रेजेंट एड्रेस जरूर है। कहां? ये भ्रिकुटी, दो बहुओं के बीच में, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, या तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, स्त्रियां तिलक लगाती है, तो आत्मा आज्ञा देती है, यानी बुद्धि मन को आज्ञा देती है, तो ये आत्मा का स्थान है। इसलिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता एक अजब सितारा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अन्य जो भी प्रकार के हठ योग करते हैं ना, कई आसन करते हैं, कुछ बहुत कुछ करते हैं, तो उसमें अंत में शवासन करते हैं। शवासन, मैं पैर नहीं हूं, टांगे नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, हाँ पैर हाथ नहीं हूं, ये मुंह नहीं हूं, और सीधा और अंत में यहां तक आते हैं। हाँ, उसको शवासन समझते हैं, बॉडी डेड डेड, हाँ डेड, और यहां एक्टिवेट करते हैं। अब राजयोग में हम शुरू से यहां एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि इनसे मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, ये तो साधन है, लेकिन मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं। मैं ज्योति आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, इनके द्वारा मैं आत्मा करा रही हूं। अब मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, नहीं देखना है मत देखो, आप मालिक हो, जरूरी थोड़ी है कि आपको देखना ही है, नहीं सुनना है मत सुनो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कई बार होता है आप कुछ सोचते हैं अंदर ही अंदर, और कोई व्यक्ति उस समय आपसे बात कर रहा है, और वो आपसे पूछेगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो देख रहा है आप गुमसुम है, आपसे पूछेगा भाई मैंने जो सुनाया वो सुना, आप कहेंगे सॉरी मैं कुछ सोच रहा था क्योंकि जो सोच रहे थे ना वो मन की आंख कुछ और देख रही थी, ये जो सुना वो सुनाई नहीं दिया आपको, तो मन की कोई आंख कुछ और देख रही थी, बुद्धि के कान कुछ और सुन रहे थे, और वही रिकॉर्डिंग थी, इसलिए ये सुनते हुए भी नहीं सुना, देखते हुए भी नहीं देखा। तो वो मैं कौन हूं जो ये सुनते हुए देखते हुए भी न्यारा अपने आप को समझ सकता हूं, वो मैं आत्मा हूं। तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, पहला स्टेप है मैं कौन हूं, फिर दूसरा स्टेप है मेरा कौन है, मेरा क्या है, तो मैं एक आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है, ये शरीर जरूर मेरा है क्योंकि मेरे कर्मों अनुसार ही मुझे मिला है, मेरे ही कर्म है, दूसरे के कर्म से ये शरीर नहीं मिला है, मेरे ही कर्मों से मुझे ये शरीर मिला है, तो इसीलिए मेरा शरीर जरूर है। लेकिन जब मेरा कर्मों का हिसाब किताब इस शरीर से भी खत्म होगा, तो आत्मा इस शरीर में रह नहीं सकेगी, उसको जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आत्मा हूं, मेरा ये शरीर है, पर मैं आत्मा जब ये निश्चय करते हैं, तो इन शरीर की इंद्रियों को अपने से अलग समझ सकते, जैसे ये वस्त्र है, ये अलग है ना शरीर से, मैं जब चाहूं चेंज कर सकती हूं, तो ये शरीर भी एक वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया है इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने लिए। पर आई कहां से है? भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, गीता में आता है ऊर्ध्व मूल अध शाखा, ये जो संसार है एक उल्टे वृक्ष की तरह है, इसका मूल ऊपर है, ऊर्ध्व ऊपर, अध शाखा है रचना नीचे है, रचयिता ऊपर, इसलिए ऊपर वाला जाने कहते। तो हम आत्माएं भी वहीं से आई है, कहां से, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है, वो आत्माओं का भी धाम है। यदि सृष्टि मंच पर हम गेस्ट के रूप में आए तो ये टेम्पररी एड्रेस है, लेकिन परमानेंट एड्रेस पांच तत्वों से पार, एक अखंड ज्योति महतत्व है, ये इतना बड़ा यूनिवर्स हम देखते हैं, इतनी कॉन्स्टिलेशंस है, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, या जो कुछ भी स्पेस साइंस में, जो कुछ भी हम कर पढ़ते हैं, लेकिन इसके पार भी कुछ है जहाँ ये आंखें नहीं जा सकती है, ये रॉकेट तो चलो कहाँ तक भी चला जाए, लेकिन ये सब इस पांच तत्वों के अंदर ही होगा, इस पांच तत्वों के पार नहीं जा सकता, पर मन जा सकता है क्योंकि वो पांच तत्वों की चीज नहीं है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उसके पार मानो सूर्य, चंद्रमा, सितारे या जो भी है, पर उससे भी पार एक अखंड ज्योति का महत्त्व है जिसको शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम, परलोक, निर्वाण धाम के नाम से हम याद करते हैं। वो आत्माओं का धाम है। तो मेडिटेशन जब हम कहते हैं तो पहला कदम है मैं कौन, और मैं कौन में पहले मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, एक चमकता हुआ सितारा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं, और मुझ आत्मा के अंदर जो मूल गुण है वो प्रकृति के गुण नहीं है। प्रकृति के अंदर तो बहुत गुण है, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ये सब बात जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं वो सब प्रकृति के गुण है, जिसको हम त्रिगुण कहते हैं। सतो रजो तमो से प्रकृति गुजरती है, तो ये पीरियोडिक टेबल में ये सब अलग अलग है। लेकिन जब एनर्जी की बात आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वो रिलीज किया, वो एनर्जी रिलीज हुई, पर वो भी फिजिकल एनर्जी है। अब ये एनर्जी जो आत्मा की एनर्जी है वो इस फिजिकल एनर्जी से बहुत अलग चीज है। तो इस शरीर की इंद्रियों का मैं मालिक हूं, मैं न चाहूं इंद्रियों से मैं परे हो जाऊं, एक सेकंड में मैं आत्मा या हूं, फिर एक सेकंड में मैं आत्मा इस शरीर से भी परे, पांच तत्वों से भी परे, एक अखंड ज्योति के महत्त्व में खुद को देखूं। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो लाल लाइट जलाते हैं, ये लाल लाइट वास्तव में परम धाम की निशानी है। फिर मन में क्या सोचना है वो फिर बुद्धि द्वारा मन को हम दिशा देते हैं, क्या सोचो। कई लोग इसको नहीं समझते, वो कहते हैं शायद आप लोग सम्मोहन करते हो। सम्मोहन नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मैं खुद को पहचानूं, तो अर्थात जिन गुणों को मैं जीवन में चाहती हूं वो मेरे पास ही है। इसलिए विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन यू, आर परफेक्ट विद इन यू। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, आप खुशी चाहिए अंदर जाओ, सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। तो अंदर जाओ का मतलब क्या, शरीर को डिसेक्ट करो तो शांति, खुशी, प्यार ये सब मिलेगा? नहीं, ये तो प्रकृति की चीज है। रक्त, पस, हड्डियां, पसलियां यही सब मिलेगा शरीर को आप डिसेक्ट करेंगे या काटेंगे, पर शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति वो कहां से मिलेगी? अब ये आत्मा के गुण है। तो आत्मा के सात मूल गुण हैं, जैसे वो सप्तरंगी रेनबो होता है ना, और उन्हीं सात रंगों को ही हम सफेद रंग में बदल सकते हैं, उसी सफेद रंग से सात रंग निकलते हैं प्रिज्म के थ्रू। तो आत्मा के भी सात मूल गुण हैं, जिसको हम इननेट वैल्यूज कहते हैं, कोर वैल्यूज, और वो कोर वैल्यूज के आधार पर ही दुनिया के सारे वैल्यूज हैं। जैसे सात रंगों के आधार पर बाकी दुनिया के सब रंग हैं, सात सुरों के आधार पर दुनिया के सारे सुर हैं, तो सात रंग कहो, सात सुर कहो, सात दिन कहो, सात दिन का ही जीवन है, ये जीवन सात दिन का है, सोमवार से रविवार तक, फिर उसके बाद फिर सोमवार आ जाएगा, तो जीवन ही कितना है, एक दिन शरीर लेना, एक दिन शरीर छोड़ना, जीवन सात दिन का है। तो ये सात का बड़ा महत्व है, इसलिए सात दिन, सप्ताह का महत्व होता है। तो आत्मा के अंदर भी सात मूल गुण हैं, जो हमारे कोर वैल्यूज है, जिनके आधार पर सारे वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, चाहे प्रोफेशनल वैल्यूज, चाहे फैमिली वैल्यूज, ये सब निर्धारित है। और वो सात वैल्यूज क्या है? पहला वैल्यू है ज्ञान। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। एक बच्चे को भी ज्ञान है, बच्चे को भी सिखाया नहीं जाता है, सच बोलो सिखाया नहीं जाता, वो सच ही बोलता है। हाँ, बाद में जब संग का रंग लगता है तो झूठ बोलना सीखता है, पर बच्चा तो सच ही बोलता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। तो ज्ञान ये सत्यता का पहला गुण है। और जहां ये ज्ञान मिल गया कि मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश पुंज हूं, चमकता एक सितारा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, तो आत्मा के ज्ञान से हम बहुत सहज शांति अनुभव कर सकते हैं। शांति ये आत्मा का मूल स्वभाव है। शरीर का स्वभाव शांति नहीं है, शरीर का स्वभाव तो एक्शन है। जितना एक्शन करेंगे उतना शरीर हेल्दी होगा, पर मन को जितना शांत रखेंगे उतनी शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि ये मन की स्थिति है। तो शांति हमको बाहर से नहीं लेनी है, अपने आप को पहचानने से शांति का अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं शांति है तो अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। और कैसे आएगी अभी? जब ये संकल्प करते हैं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ओम शांति आपसे सबसे कहलवाया। ओम शांति मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो जैसे ही आपने कहा मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तुरंत आपको शांति का अनुभव होगा। यू आर वॉट यू थिंक, एंड वॉट यू थिंक दैट यू बिकम, यू विल बिकम दैट। अगर आप ये सोचते हैं मैं तो बहुत अशांत हूं, मैं तो बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, भगवान भी नहीं दे सकेगा। कितना भी भगवान से मांगो भगवान शांति दो, भगवान कोई शांति कोई चीज थोड़ी जो आपके हाथ में देगा कि हाँ भगवान ने दिया। भगवान बच्चा दो, बच्चा हो गया वो तो चलो पता चला, शांति दो कौन सी चीज है वो जो आपको हाथ में देंगे। तो शांति ये जितने भी गुण है ये मांगे नहीं जाते हैं। वैल्यूज कैनॉट बी टॉट, कैनॉट बी आस्क्ड फॉर, दे आर कॉट, क्योंकि ये सूक्ष्म शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। तो जहां ज्ञान है मैं एक आत्मा हूं तो मेरा स्वभाव शांति है, और जहां शांति है क्योंकि पॉजिटिव सोच है तो वो पॉजिटिव सोच ही शांति का अनुभव कराएगा, और नेगेटिव सोच अशांति का अनुभव कराएगा। और जहां शांति है वहीं प्रेम है। प्रेम ये आत्मा की शक्ति है। प्रेम कोई बाहर की चीज नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता प्यार नहीं करता ये कहने की बात नहीं होती। आप सबको प्यार दो, आप दोगे तो आपको मिलेगा, वो आपके पास है, एक मांगने की चीज नहीं है। ढाई अक्षर का ये शब्द कहते ना कबीर ने, कितना सुंदर का, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लो वही पंडित हो। बच्चे को कौन सिखाता है प्यार करो, कैसे सबको आलिंगन करेगा बच्चा, क्योंकि उसके अंदर आत्मा में प्रेम की शक्ति है। और जहां प्रेम है वही सुख है, जहां नफरत है वैर है दुश्मनी है वहां दुख है। पर ज्ञान और शांति के बीच में भी एक शक्ति है, वो है पवित्रता। जब ज्ञान है कि मैं एक आत्मा हूं तो मैं आत्मा बहुत शुद्ध हूं, अपने असली स्वरूप में बहुत शुद्ध हूं। इसलिए जब भी मन में कोई अशुद्ध विचार आता है, कोई बुरा विचार आता है, तो क्या कहते हैं, आज मेरा मन खा रहा है, मेरा मन खाता है। क्यों मन खाता है? क्योंकि मन वास्तव में बहुत शुद्ध विचार करना चाहिए उसको। जैसे ये सफेद वस्त्र है, अगर जरा सा दाग लगता है बुरा लगता है, अरे इतना सफेद और ये एक दाग क्यों होना चाहिए? काले कपड़ों पर कितने भी दाग लगे पता भी नहीं चलेगा, पर सफेद पर तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में बहुत शुद्ध हूं, अब ये संकल्प करना होता है, ये विचार करना होता है। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, जिसको हम शुद्ध स्वरूप कहेंगे, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, और छठा है आनंद स्वरूप हूं। आनंद ये शब्द प्रकृति का नहीं है, ये स्पिरिचुअल शब्द है। जितने भी आप देखेंगे संत महात्माएं, उनके नाम में अंत में आनंद होता है, सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद स्वामी, प्रेमानंद स्वामी, दयानंद स्वामी, आनंद। तो आनंद का कोई अपोजिट शब्द नहीं है, आनंद इटसेल्फ इज द, जिसको हम ब्लिस कहते हैं, उसका अपोजिट नहीं है। ज्ञान का अपोजिट है अज्ञान, पवित्रता का अपोजिट है अपवित्रता, शांति का अपोजिट है अशांति, प्रेम का अपोजिट है नफरत, आनंद का अपोजिट क्या है? आनंद एक स्पिरिचुअल वर्ड है, और वो आनंद अगर सबसे ऊंचा आनंद, उसको हम परमानंद कहते हैं, परमात्मा का आनंद। वो आनंद अगर मिल गया तो बाकी जितने भी फिजिकल आनंद कोई समझ भी ले ना, चटपटा खा लिया, वाह 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 बड़ा आनंद आ गया, चटपटा खा लिया, लेकिन अंदर तो कोई आनंद नहीं है ना, वो मिर्ची खाया खूब अंदर जल गया पता भी नहीं चलेगा, जीभ पर तो आनंद आ गया परंतु वो आनंद जिसके आगे सब बाकी फिजिकल आनंद सब फीके, वो आनंद अगर अनुभव कर लिया ना तो उनसे ऊपर कोई आनंद नहीं, और वही मेडिटेशन में हमें मिलता है। और जहां ये आनंद है वही शक्ति है, जिसको हम मनोबल कहते हैं, विल पावर कहते हैं, ये भी आत्मा की शक्ति है। अब इसको समझना है और फिर अपने अंदर धारण अनुभव करना है, और फिर मन बुद्धि को इस आकार दुनिया से पार उस शांति की दुनिया में अनुभव करना है। तो चलिए अब हम 3 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे, फिर तो आगे आपको अभ्यास मिलता रहेगा आपकी कॉन्फ्रेंस में। तो सीधा बैठेंगे, अब मन को बुद्धि के द्वारा संकल्प देना है कि मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं, अंदर ही अंदर ये मन में सोचे, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, भ्रकुटि के मध्य विराजमान चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूं। मुझ आत्मा ने कई अभिनय किए, कई शरीर धारण किए, पर मेरा वास्तविक स्वरूप एक दिव्य प्रकाश है। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा एक अभिनेता हूं। मेरा वास्तविक धाम पांच तत्वों से पार इस आवाज की दुनिया से बहुत दूर अखंड ज्योति का एक महतत्व है। जहां मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं, मेरा मूल स्वभाव शांति है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विराजमान है। अब इसी शांति की शक्ति का एक गहन अनुभव करें। महसूस करें अपने मूल स्वभाव को। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान रही हूं। अब इसी शांति की शक्ति को स्वयं में समाएं। एक हल्कापन महसूस करें, एक न्यारापन महसूस करें। और इसी शक्ति को स्वयं में संजोए हुए फिर वापस लौटे साकारी दुनिया में, साकारी शरीर में, और फिर कर्म करें। पर उसी शांति की शक्ति के साथ तो आपका हर कर्म श्रेष्ठ होगा। हर कर्म में खुशी होगी, हल्कापन होगा। हर कर्म सार्थक होगा, सफल होगा। और ये जीवन आप श्रेष्ठ बना सकेंगे और जन्म जन्म भी सार्थक बना सकेंगे। ओम शांति।